मुश्किल अल्फाज की वजाहत आपने लगाया, जो मुश्किल अल्फाज है उस पर निशान लगाया। कोई है नया लफ्ज जो पीछे आप ना पढ़ चुके हो, नया हो जी? इमलाक। और कोई नया जो आपने ना पढ़ा हो? तो चले इसको देख लेते हैं। आप देखें कि आयत 151 जो है इसमें तालो है। ताला पहले पढ़ चुके हैं ना, क्या था इसका रूट वर्ड? एन लाम, हाँ एन लाम वो है ना, तो बुलंदी के लिए है ना। अल्लाह ताला भी कहते हैं, और तालो का मतलब होता है कि कोई शख्स बुलंदी पे खड़ा होकर किसी को बुलाए, यानी बुलंद मकसद के लिए किसी को बुलाना, बाकी उससे नीचे हैं तो वो ऊंचाई पे खड़ा बुला रहा है या ऊंचे मकसद के लिए बुला रहा है। ठीक है, तालो। फिर जैसे आपने कहा कि इमलाक लफ्ज है, ये हमने पहले जो है वो नहीं पढ़ा, तो इमलाक जो है इसका रूट वर्ड है मीम लाम काफ। मीम लाम काफ इसका रूट वर्ड है, और ये तंग दस्ती के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तंग दस्ती क्या होती है कि कोई शख्स जो है वो, जैसे तंगी होती है ना किसी चीज की, तो इसी तरह यानी तंगी के साथ आप याद रखें तंग दस्ती। और मतलब क्या है तंग दस्ती का? मतलब एक होती है मुफलिसी और मोहताजी। ये उस मुफलिसी और मोहताजी को नहीं कहते, बल्कि आम जो मुफलिसी और मोहताजी में लोग मुब्तिला होते हैं उसको नहीं कहते, बल्कि उस अंदेशे को कहते हैं कि जो मालो दौलत मौजूद है कि वो कहीं खर्च होकर खत्म ना हो जाए। एक तो है ना कि वाकई किसी पर मुश्किल और मोहताजी आ चुकी है, और एक ये कि आई नहीं है, लेकिन ये कि मालो दौलत तो मौजूद है लेकिन एक खतरा है, अंदेशा है कि कहीं ये खत्म ना हो जाए, उसको कहते हैं। यानी अमल का मौजूदा मालो दौलत का हाथ से निकल जाना। एक इसके मानी ये भी है, जैसे खशियता इमलाक, यानी खशियता इमलाक से मुराद क्या? खशियता इन्फाक। तो आप क्या तर्जमा करेंगे फिर इसका? तंग दस्त होने की फिक्र में रहना। तंग दस्त का क्या मतलब है? तंगी दस्त, हाथ का तंग होना, कि हाथ तंग ना हो जाए उसकी फिक्र करना। होता है ना कि कहीं जैसे बाद में होता है कि मेरी जॉब ही खत्म ना हो जाए, हमारे पास पैसे तो हैं वो खत्म ना हो जाएंगे, तो कोई ऐसी मुश्किल ना आ जाए कि वो खत्म हो जाए। तो वैसे तंग दस्ती के लिए कुरान ने 7 लफ्ज इस्तेमाल किए हैं। एक है फकर, दूसरा मस्कना, तीसरा आइला, चौथा इमलाक, पांचवा कतारा। और कतारा जो है आप पढ़ भी चुकी हैं सूरत आल इमरान में, मत्तेउहुन्ना अलल मूसेई कदरुहु वअलल मुक्तरी कदरुहु। और पांचवा कतरा के बाद छठा बासा बासा, और सातवां है मतराबा। तो ये सारे लफ्ज जो है वो किसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? तंगी के लिए, तंगदस्ती के लिए। फकर किस तंगी को कहती है? इंतहाई तंगदस्ती। फकर उसी से फकीर भी है, यानी रीढ़ की हड्डी का मनका जो है वो टूटने लगा है। कमर की हड्डी नहीं जैसे टूटती, तो कमर ही की कमर जिसकी कायम रहती है और खड़ा चलता फिरता है, जिसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाए, तो ऐसी तंदुरुस्ती जो रीढ़ की हड्डी को ही मुतासिर कर दे, ऐसी मुसीबत जो कमर की हड्डी को तोड़ दे। फकर। मस्कना क्या होता है? वह मुश्किल गुजारा करना, जैसे मिस्कीन, जुरियाते जिंदगी ना होने के बराबर। अहिला, अहिला अहलो अयाल से आप याद रखें कि अयाल के खर्च पहले दब जाना, वो अहलो अयाल वाला है। तो क्या मतलब है इसका? कि अहलो अयाल का, घर वालों का ऐसा बोझ है कि उसके नीचे वो आदमी दब गया है, गोया कि इनके अखराजात जिंदगी उठाना चूंकि उसकी जिम्मेदारी है और बहुत मुश्किल है उसके लिए, और उसके बोझ चले वो दबा हुआ अहलो अयाल वाला। फिर इसके साथ आप इमलाक अभी आपने पढ़ा है कि तंगदस्त होने की फिक्र रहना, और पांचवा कतर, फाफ्तारा अपने अयाल पर खर्च करने में बुखल करना, مفلسی اور ایسی نداری کہ ہے تو نہیں غریب ہے تو نہیں تنگ دست تو نہیں ہے اپنی حیثیت کے مطابق لیکن اپنے گھر والوں پر خرچ نہیں کرتا بخل کرتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے بادشاہ یہ فقر و فاقہ کا دور ہے وَأَتِمُ الْبَائِسَ الْفَقِيرَ اور ساتواں مَتْرَبَا او اِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَا یتیمن ذا مقربہ او مسکینن ذا مقربہ. کون سی سورت کی آیت ہے؟ سورت بلد. تو یہ ہے تنگ دستی. یس. اور مطربہ میم تا را با کے بعد ساتھ جو ہے ہا کو جوڑ دیجئے یعنی تائے مربوطہ کو اور یہ مٹی سے ہی ہے نا تا را با. اور ایک صحابی کو بھی آپ نے کہا تھا ابو تراب. تو باقی جو ہے آپ چلیں آیت 52 کو دیکھیں تو یہ بھی جو ہے آپ پڑھ ہی چکی ہیں. تو قیل جو ہے کاف یا لام کیا معنی ہے اس کے؟ ناپنا. کوئی لکوڈ چیز ہوتی ہے نا تو کسی جو جو چیز ماپی جاتی ہے اس کے لیے آتا ہے. میزان جو ہے اس کا لفظ کس کے لیے آتا ہے؟ ہاں ٹھوس چیز کے لیے تولنے کے لیے. اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ وزن سے ہے. شاباش. کون بولا وزن؟ الحمدللہ. تو وہ نظر ہی نہ آ رہی تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ اب آپ پریشان ہوں گے لیکن میزان وزن سے ہے. اس یاد رکھیں اور آپ یاد رکھا کہ کریں جو فیملی کے ایک ورڈ کے جو فیملی کے ورڈز ہوتے ہیں جیسے وزن ہے پھر اس کے میزان ہے موازی موضوع یہ سب اس کی فیملی کے الفاظ ہیں. پھر آیت 153 میں سبولہ ہے. سبولہ کیا کسے کہتے ہیں؟ سیدھا کشادہ راستہ ایسی سڑک جو کشادہ ہو جس پر آسانی کے ساتھ جو ہے وہ چلا جا سکے. آیت 154 میں تماماً کیونکہ نیا کوئی نہیں ہم آپ ہی نے بتانے ہیں نا سارے. تامیم مسٹر روپٹ شاباش. پھر اس کے بعد جو ہے تفصیلن کا روپٹ کیا ہے؟ فاسوادلام شاباش. آیت 156 میں طائف تعینے کا کیا روپٹ ہے؟ ماشاء اللہ طا طوف طائفہ طواف یعنی چکر لگانے والے یا پھر طائفہ جو ہے وہ ایک گروہ کے لیے بھی پھر استعمال کیا جاتا ہے اور یہاں پہ طائفہ تین ہے تو دو گروہ جو ہے وہ مراد ہیں. اور آیت 157 جو ہے اس میں لفظ ہے احدا. کیا روپ ہے اس کا؟ ہادال یا شابر. اور یہ لفظ جو ہے کس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے؟ ہدایت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. جی ہاں جی آیت 156 میں آپ پیچھے سے پوچھ رہی ہیں دراستہم درس بھی اسی سے ہے نا دال راسین. اور یہ لفظ آپ پہلے بھی پڑھ چکی ہیں درس درس و تدریس پڑھنا پڑھانا ہے نا. اور آیت 157 میں ہم تھے یس دفون سواد دال فا تو ویسے یہ کنارے کو کہتے ہیں. اور صدفہ کا لفظ جو ہے یہ منہ پھیرنا کنارہ کشی اختیار کرنا اس کے لیے یہ لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. تو اس میں جو صدف ہوتی ہے جیسے ہاں سی پی جو ہوتی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے اس کے منہ مڑے ہوئے ہوتے ہیں نا تو ہی اندر موتی محفوظ ہوتا ہے. ہاں تو اس طرح سے جو ہے آپ چاہیں تو اس کو جو ہے وہ یاد کر سکتی ہیں کہ کیونکہ اگر آپ اس کی کوئی بھی نشانی رکھ لیں گی تو آپ کے لیے یاد کرنا جو ہے وہ آسان ہو جائے گا. تو بعض لوگ جو ہیں وہ صدف نام بھی رکھتے ہیں ہے نا. کئی لوگوں کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ صدف جو ہے وہ نام ہے. تو اب آپ دیکھ لیں کہ آپ کو یہ بات یاد رکھنی ہے کہ صدف لفظ جو ہے یہ کنارے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جیسے پہاڑوں کے درمیان کھلے میدان کو وادی کہتے ہیں اور پہاڑوں کے کنارے جو اس وادی کی حدود ہوتی ہیں تو صدف کی طرح ہوتے ہیں نا پہاڑوں کے کنارے बीच में खुला रास्ता है, जगह है, साइडों में पहाड़ है, तो जैसे सदफ होती है ना, सीपी का आप अंदाज जो है उसको सोचते हैं, तो सदफ का तर्जमा वादी का किनारा भी किया जाता है, पहाड़ का किनारा भी किया जाता है, दोनों तरह इसके तर्जमे जो है वो किए जाते हैं। और वैसे तो फिर वही बात के किनारे के लिए भी कुरान ने जो है वो बहुत से लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किए हैं। वैसे मुझे जब अंदाजा हुआ कि इस तरह मिलते जुलते अल्फाज हैं और मुख्तलिफ हैं, तो यकीन करें कि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, मीनिंग में, समझने में, फिर रट्टा सिस्टम की इतनी जरूरत नहीं है, समझ आ जाती है कि मसलन अब किनारा ही है तो तरफ भी किनारा है, हद भी किनारा है, हरफ भी किनारा है, उफक भी किनारा है। और शिव आप पहले भी ये लफ्ज जो है वो पढ़ चुकी हैं कि वो लोग जो थे वो एक आग के गड़े के किनारे थे, वकुम तुम अला शफा हुफरतिम मिनन नार, है ना, तो शफा भी किनारा है तो सारे किनारे। अब साहिल भी किनारे को कहते हैं, उदवा भी किनारा है, तो इसी तरह सदफ जो है ये भी किनारा है। लेकिन फायदा आपको क्या होता है कि जब आपको मिलते जुलते अल्फाज जो है वो पता चलते हैं तो उसको गो के याद तो करना ही है, याद किए बगैर तो कुछ नहीं जो है वो आता दुनिया में, मेहनत के बगैर। लेकिन अहम बात क्या है कि कुरान का जो इल्म है इसमें बड़ी यकसुई के साथ, और बड़ा ऐसे लगता है जैसे बहुत आप पसंदीदा कोई मशरूब पिए और आपके दिल को ठंडक हो, सेराबी हो ना, शरह सदर, तो जो जो आप इसके मानी में, इसके तर्जुमे में आगे बढ़ते चले जाते हैं तो आपकी सूझबूझ जो है वो और उसमें इजाफा भी होता है, और उसके साथ साथ क्या है कि आपको शरह सदर मिलता जाता है ना, कि मिलते जुलते अल्फाज है। अच्छा वो भी किनारा है, ये भी किनारा है, ये किस चीज का किनारा है, वो भी काटना है, ये भी काटना है, अच्छा वो सख्त चीज का काटना है, ये किसी और चीज का काटना है, तो इसमें आप लोग खुश हुआ करें और फिर याद किया करें, इसको मेहनत किया करें। और इसका मतलब है कि तालबिल्मी के जो आदाब हैं, फिर हमारे अंदर अभी वो आदाब नहीं आया, अगर हमें इससे परेशानी हो कि फिर किनारे के लिए 10 लफ्ज हैं कुरान में, तो अगर एक दफा आप एक ही याद कर रही हैं बाकी 9 से मुतारिफ हो रही हैं, तो दूसरी दफा जब वो आएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ भाई ये लफ्ज हमने पहले जो थे वो सुने थे, तो आप ऐसा नहीं होगा कि आप उससे बिल्कुल मुतारिफ ही नहीं है ना। और आप सोचते हैं कि वो लोग भी तो है ना जिन्होंने किताबें लिखी, तो आप ही जैसे लोग होते हैं जो किताबें लिखते हैं, कोई अलग थोड़ी होते हैं कि उनके सर पे सींग लगे होते हैं, या ये कि वो अलग मखलूक है, बिल्कुल ऐसी दो आंखें और दो उनके कान होते हैं, इसी तरह उनकी उनके सर पर सर ही होता है, जैसे आपके और हम सबके सर पर है, हमारे जितने उनके पास 24 घंटे होते हैं दिन और रात, खाते पीते भी हैं, बीवी बच्चे सारी चीजें, और उसके साथ साथ वो किताबें लिख जाते हैं, तो वो भी तो बंदा था ना जिसने इकट्ठा करके, किसी ने मुतरादिफातुल कुरान लिखी और किसी ने मुफरिदातुल कुरान लिखी, किसी ने अलमोजमुल मुफरिस लिखी, किसी ने अलमुंजद लिखी, है ना, तो बेशुमार किताबें जो इस तरह रिसर्च। आपको पता है कि मोजमुल मुफरिस जो है ये बहुत अच्छी डिक्शनरी है कुरानी आयतों की, मसलन हुदन लफ्ज है तो कुरान की कौन कौन सी सूरत में और कौन कौन सी आयत में कितनी दफा वो इस्तेमाल हुआ है उससे पता चल जाता है। इसी तरह अल्लाह लफ्ज है, या जितने भी अल्फाज हैं वो डिक्शनरी है कुरान की आयतों की डिक्शनरी, तो बस आप झट खोल लें और आपको पता चल जाता है कि इस लफ्ज की कितनी, ये लफ्ज कितनी दफा कुरान में कितनी आयतों में इस्तेमाल हुआ है। तो हाफिज भी तो इंसान ही है ना, और 6 साल का बच्चा भी कर लेता है और 80 साल का बूढ़ा भी नहीं करता, वो इंतजार ही करता है कि हाँ कभी जिंदगी में वक्त मिलेगा तो मैं करूंगा या मैं करूंगी। तो बस असल में हम में से कुछ लोग ना इरादे बांधते हैं, सोचते हैं कि करेंगे और कुर्बानी करने को तैयार नहीं होते, और कुछ लोग जो हैं वो उड़ते हैं और मेहनत करते हैं, कुर्बानी करते हैं, और फिर वो दुनिया को बता जाते हैं कि ये है जीने का तरीका और ये है कि जीने का मकसद। ऐ मेरी हम सफर, ऐ मेरी हम कदम, आओ हम तुम चलें उस हसीन राह पर जिसके आखिर में है मेरे रब की रजा, तेरे रब की रजा, है ना। तो कुछ लोग जो हैं इस तरह से जीते हैं और इस तरह से मरते हैं, और मैं तो मेरी दुआ भी है और इंशाल्लाह इंतजार भी है, मुझे उम्मीद है कि आप इस क्लास में ऐसे लोग होंगे जो किताबें लिखेंगे, है ना, और कोई लिखना मुश्किल नहीं है, और आप में से बाज लोगों की मैं देख रही थी तहरीर बड़ी अच्छी है, और हमारी समर में जो यूथ आई है, मतलब इसमें भी आप देखें कि हमारी यूथ जो है, एक बच्ची ने वो आखरत जो हमारी क्लासेस हुई तो उसने बड़ी अच्छी पोम्स लिखी है, जिसमें आखिरत के बारे में और अपनी जिंदगी के मकसद के बारे में तो क्या है कि जो उसके ख्यालात थे उसने उसको एक रब दे दिया, तो अब ये कि अगर वो किसी से इस्लाह ले ले तो कल को बहुत बड़ी शायरा बन सकती है ना। तो असल में बाज़ुकात हम ओवर एस्टिमेट करते हैं और बाज़ुकात अंडर एस्टिमेट करते हैं, और बेहतरीन इंसान मुसलमान वो होता है ना अंडर एस्टिमेट करे ना ओवर एस्टिमेट करे, मुनासिब तरीके से अपने वक्त का इस्तेमाल करके ये सोचे कि मैं ये काम जो है वो कर सकती हूँ। तो आप लोगों ने ना मतलब आपको जैसे किनारा अगर एक दफा आया तो आपने सोचना है कि इससे पहले भी तो आया ना, तो कहाँ कहाँ आया था, क्यों इस तरह से सोचना है, ताकि आपके इल्म में आपके फहम में आपके अमल में जो है वो इजाफा होता चला जाए। और माशाल्लाह आपने क्लास में जो है क्लास में जो दाखिला लिया है तो वो यानी अच्छे तरीके से उसको करना है, ना कि रो रो के करना है, ठीक है ना। तो ये था स्वाद दाल फा सदफ, तो ये किनारे को भी कहते हैं। और किनारा जब किसी चीज का आता है तो ऐसे एंड होता है ना, जैसे मुंह फेर लिया, तो उसी से मुंह फेरना किनारा कशी करना, उसके लिए भी ये लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। 158 जो है यंजुरूना हल यंजुरूना, और एंड भी है इन्ना मुंतजिरून, क्या है रूट वर्ड इसका, शाबाश। 159 जो है इसमें जो है फर्रतू, क्या रूट वर्ड है इसका, फारा कौम, और फर्क करना फिरका भी इसी से है। और शियान शीन या आयन, क्या मानी है इसके, ये भी एक अलग ग्रोह को कहते हैं जिसके ख्यालात में एक शिद्दत होती है। यूनबे ओम का रूट वर्ड क्या है, नून बा हमजा, शाबाश। आयत 160 में सही आती, क्या रूट वर्ड है, माशाल्लाह। तो सीन वो हमजा सू से है, ठीक है ना। तो अब आप देख लें कि माशाल्लाह आपको आता है। 161 में हनीफन लफ्ज है, क्या है इसका रूट वर्ड, हा नून फा, ऊंचा बोलना है जोर से बोलना है, इसी से मिलता जुलता भी मैंने आपको एक बताया था जिसका ऑपोजिट है जनब, जीन नून फा, एक नुक्ता का फर्क है। तो आप देखें मानी में तब्दीली है, हनफ यकसुई है और जनब क्या है, अलग हो जाना, एक साइड पर हो जाना। और 164 है, और 164 में लफ्ज है, एक तो है अबगी बागैन या चाहना है ना, तो आ जो लग गया साथ क्या है अबगी यानी मैं चाहता हूं, और नबगी होता तो हम यबगी वो है ना, तो इस तरह मानी में फर्क पड़ जाता है। आगे है वला तजिरु वाजिरतुन विजरा, हाँ तो क्या है इसके रूट वर्ड, वोजारा, और वोजारा जो है ये किसे कहते हैं, हाँ यानी बोझ को कहते हैं। और आप देखें कि विजर जो है, विजर क्या है, ये मजदर है, और वाजिरतुन जो है वो क्या है, पुश पर बोझ उठाने वाला, हाँ आदमी यानी इसम फाइल वाहिद मुअन्नस है ये। और वजरा क्या है, गुनाह का बोझ, बोझ है। इसी की फैमिली का कोई लफ्ज बताएं, वजीर, वो क्या करता है अपना जो उसका साथी होता है उसका वो बोझ उठाता है जो बादशाह होता है। इसी तरह कोई और फैमिली का बड़ा मारूफ लफ्ज है और आप बोलते हैं औजार है ना, औजार भी क्या है कि औजार लेकर आए साथ, बोझ लेकर आए। तो इस तरह आप याद किया करें ताकि आपकी जो है वो क्या कहते हैं हड्डियों में और गोश्त में और खून में वो रच बस जाए, आप अपनी फैमिली के वर्ड के साथ उसको मिलाया करें, मैच किया करें। ये शुरू दिन से मैंने आपको रूट वर्ड याद करने का तरीका बताया था। आगे मर्जियों को राजीम आइन, शाबाश। फिर है खलाइफा फा, तो इसी से खलीफा है ना, खुलाफा है, इसी से मुखालिफ है कि किसी की कोई राय होती है उसके पीछे जो आप राय देते हैं उससे हटकर मुखालफत कर रहे हैं, तो मिलते जुलते। शरीयों का क्या रूप है, सीन रायन सुरा, जल्दी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और बड़ी खूबसूरत है सूरत अलनाम की आखिरी आयत का ये आखिरी वर्ड, वा इन्नहू लगफूरुर रहीम, बेशक वो बहुत दरगुजर करने वाला और रहम फरमाने वाला है ना। तो लगफूर उनका क्या रूप वर्ड है, गैन फारा गफारा, ढांप लेना, रहीम रहामीम, रहम से है। रहीम और रहमान में क्या फर्क है प्यारे बच्चों, प्यारी बहनों बताएं आप।
रहमान
मुबालवे का सीरा है, बहुत ज्यादा रहम करने वाला, शाबाश। और
दुनिया के लिए, दुनिया के लिए और आखिर में रहमान।
तो रहमान कहाँ पे रहम करने वाला है? दुनिया में। और दुनिया में कौन कौन लोग रहते हैं? काफिर भी मुसलमान भी, तो सब पर रहम करने वाला है। और रहीम जो है आखिरत के लिए रहम करने वाला। रहीम में भी जोश है और उसके साथ साथ एक तसलसल है।